हरे कृष्णा, आप सबका इस्कॉन के श्री श्री राधा गोकुल आनंद मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव में स्वागत है। आशा करते हैं कि आपको दर्शन और संकीर्तन का आनंद मिला। इस भव्य महोत्सव में शामिल होकर आप भी इस महोत्सव का आनंद बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव, उनका अवतार लेना हमारे लिए बहुत एक विशेष घटना है, क्योंकि भगवान पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण होकर सारे ब्रह्मांड को शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवान अपने निजी धाम से आते हैं, हमारे भौतिक जगत में प्रपंच में अवतीर्ण होते हैं और उस आध्यात्मिक जगत का ज्ञान हमें देते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, मेरा एक धाम है जो कि इस भौतिक संसार से परे है। वहां ना तो कोई सूरज की आवश्यकता है, ना अग्नि की, ना बिजली की, ना चंद्रमा की, क्योंकि वहां पर सभी कुछ स्वयं प्रकाशमान है, सब कुछ चिन्मय है। वो है मेरा धाम, मेरा नित्य धाम। और वहां जो लौट कर जाता है वो पुनः कभी इस संसार में लौट कर नहीं आता है। उस धाम की प्राप्ति करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाकर भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करना, यही एकमात्र उद्देश्य हमारे शास्त्र में बताया हुआ है और कोई भी उद्देश्य नहीं है। तो अगर हमें जानना है या श्रद्धा रखनी है कि भगवान का धाम है क्या, वहां हो क्या रहा है और वहां कैसे जाना है, क्यों जाना है, ये सब जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहां पर आते हैं और साथ साथ में अपना धाम भी लेकर आते हैं। और उस धाम को यहां भौतिक संसार में प्रकट करके उस धाम के भीतर सुंदर मधुर लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। इन लीलाओं के बारे में श्रवण करके, चिंतन मनन करके, अध्ययन करके हम जान सकते हैं कि भगवान के धाम में क्या हो रहा है, भगवान कौन है, उनकी लीलाएं क्या हैं, उनके पार्षद क्या हैं और उनके भक्ति में कितना आनंद है। भगवान का अवतार लेना और भगवान के यहां पृथ्वी लोक में नाना प्रकार के सुंदर लीलाएं करना, ये एक आध्यात्मिक जगत के लिए एक खिड़की है, जिस खिड़की से हमें पूरा पूरा दृश्य मिल सकता है, एक झलक मिल सकती है कि भगवान के धाम में क्या हो रहा है। इसलिए भगवान का अवतार लेना इस पृथ्वी लोक पर ये उनकी विशेष कृपा है इस संसार के बद्ध जीवों के प्रति, खास करके मनुष्य जीवन के प्रति, क्योंकि मनुष्य जीवन ये भगवान की अनमोल भेंट है जिसमें कि हम उनके बारे में जान सकें। मनुष्य जीवन में भी हम गीता भागवत का संदेश सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका आचरण कर सकते हैं, पशु जीवन में संभव नहीं है। इसलिए भगवान ऐसी कृपा करते हैं बारंबार युग युग में। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, युग युग में मैं मेरी आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति द्वारा इस भौतिक जगत में प्रकट होता हूं। मैं अज हूं, अज अर्थात अजन्मा, मेरा कोई जन्म नहीं है। मेरा शरीर दिव्य है, अव्यय है, कभी भी क्षीण नहीं होता, कभी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि की त्रुटियां मेरे शरीर में नहीं है। मेरा शरीर सच्चिदानंद है और मैं सारे प्राणियों का स्वामी हूं। हे अर्जुन, जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, उनका उगम स्थान मैं हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विताः। हे अर्जुन, सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत मैं हूं, और जो इस सत्य को अच्छी तरह से जान लेता है वो मेरा भक्ति भाव से भजन करता है, मेरी सेवा और भक्ति करता है। तो भगवान के धाम में रहने वाले जो शुद्ध पुरुष हैं, वो सदा भगवान की सेवा और भक्ति में लगे हुए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अलावा उनको और कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन यह संसार में हम सब, हमारे आराध्य प्राणनाथ, आराध्य देव श्री कृष्ण को भूल चुके हैं और इसलिए संसार में संघर्ष कर रहे हैं। प्रकृति के कड़क नियमों के खिलाफ बहुत संघर्ष करना पड़ता है हर एक प्राणी को। ममायवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः मनः षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। कर्षण मतलब संघर्ष। सारे प्राणी यह संघर्ष कर रहे हैं और इसका कारण क्या है? ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य अंश हैं, लेश मात्र कण मात्र अंश उनके हैं। लेकिन जब उनको भूलकर हम स्वतंत्र भावना से इस भौतिक संसार का भोग करने का प्रयास करते हैं तो हम माया में पड़ जाते हैं। भगवान के माया शक्ति के वशीभूत होकर हमें बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर काटने पड़ते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। एक संत ने गाया है कि यह संसार बड़ा दुखदायी है हे प्रभु। क्यों? क्योंकि यह संसार में बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, और फिर से हमें 9 महीने के लिए एक मां के गर्भ में फिर से रहना पड़ता है। बड़ा दुख का संसार है ये। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं हर प्राणी को, हर जीव को, कि इस संसार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाकर मेरे पास आ जाओ। तो हम सबको बुलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। यह है उद्देश्य उनका यहां आने का। भगवान श्री कृष्ण यहां आने के लिए बाध्य नहीं है। हम जब जन्म लेते हैं इस भौतिक संसार में तो अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने कर्मों के फल में वश होकर हमें जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं इस संसार में। उनको कोई बंधन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। भगवान जब चाहें तब आ सकते हैं और जब चाहें तब लौट के जा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है। हम जब कर्म करते हैं उन कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है, और इन कर्मों के फलों को भुगतने के लिए बारंबार हमें जन्म लेना पड़ता है इस संसार में। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण की स्मृति पुनः जागृत हमारे अंतःकरण में हो जाती है तो उस समय हमें ज्ञात होने लगता है कि मैं तो माया के गोदी में सो रहा था और इसलिए मुझे इतनी दुखद अवस्था की अनुभूति करनी पड़ी। अभी मुझे हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण के पास लौट कर जाना है। और इस तरह से जीव भगवान की भक्ति में लग जाता है। बहुत साल पहले ऐसे ही दुखद अवस्था थी पृथ्वी पर, 5,000 वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर पाप का बोझ इतना बढ़ गया था कि पृथ्वी माता इसको सहन नहीं कर पा रही थी। जल्दी से ब्रह्मा जी के पास गई शोकग्रस्त अवस्था में और ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगी कि मैं बड़ी पीड़ित अवस्था में हूं, क्योंकि यहां पर राजा के रूप में असुर राज कर रहे हैं और इसलिए इतना पाप ये लोग कर रहे हैं और ये पाप का जो बोझ है मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। उस समय ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को लेकर वो सब क्षीरोदक्षाय विष्णु अर्थात क्षीर सागर के तट पर गए। वहां सारे देवताओं ने पुरुष सुक्त प्रार्थना की और उस समय ब्रह्मा जी के अंतःकरण में क्षीरोदक्षाय विष्णु ने संदेश भेजा और उस संदेश को ब्रह्मा जी ने सारे उपस्थित देवी देवताओं को सुनाया और कहा कि हे देवी देवता, कृपा करके ध्यान से सुने कि क्षीरोदक्षाय विष्णु जो कि इस ब्रह्मांड के उगम स्थान हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या चाहा है। वो हमारे समस्या को अच्छी तरह से जानते हैं और इस समस्या का हल करने के लिए वो बहुत ही जल्द पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण होने वाले हैं, इसलिए हमें सब वहां यदुकुल में अलग अलग परिवारों में जन्म लेना होगा और वही भगवान श्री हरि की लीला में सहायता करना होगा। और निश्चित ही भगवान श्री हरि उन सारे दुष्टों का नाश अवश्य करेंगे जिनकी पाप की वजह से पृथ्वी माता के ऊपर इतना बोझ आ गया है। इस तरह से पृथ्वी माता संतुष्ट हुई, ब्रह्मदेव और सारे देवता भी संतुष्ट हुए, सब लोग अपने अपने धाम में लौट कर गए। उधर वसुदेव राजा शूरसेन के पुत्र, उनका विवाह देवकी से हो रहा था और बड़े लाड़ प्यार से देवकी के भाई कंस देवकी को रथ पर सवार होकर लिए जा रहे थे और अचानक उस समय एक आकाशवाणी आई और आकाशवाणी ने कहा, अरे कंस, तुम तो बड़े मूर्ख हो, तुम नहीं जानती कि जिस स्त्री को तुम बड़े लाड़ प्यार से ले जा रहे हो उसके नए घर में, उसका 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। जब ये आकाशवाणी सुनी कंस ने तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुरंत अपना तलवार निकाला, अपने बाएं हाथ से अपने बहन के बाल पकड़े और हत्या करने ही वाला था कंस उसकी, लेकिन उस समय वसुदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना आरंभ किया कि हे कंस, ये देखो तुम मृत्यु से इतना क्यों डरते हो, मृत्यु तो सभी को आने वाली है एक न एक दिन। मृत्यु जन्मवताम वीर देहे न सहजायते, ये मृत्यु इसका जन्म जन्म के साथ में ही होता है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो मृत्यु भी उसके साथ में ही जन्म लेता है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण यही बताते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसके लिए मृत्यु निश्चित है और जिसका मरण होता है उसके लिए जन्म निश्चित है। तो वसुदेव कहने लगे कंस से कि हे कंस, तुम तो शूर वीर पुरुष हो, भोज वंश के गौरव हो, और अगर इस तरह का नीच कार्य करोगे, एक स्त्री की हत्या करोगे और वो भी तुम्हारी बहन और वो भी उसके विवाह के दिवस पर, तो तुम तो बदनाम हो जाओगे और तुम अकेले नहीं, सारा भोज वंश जो है उसके ऊपर कलंक लग जाएगा। इसलिए तुम्हें यह शोभा नहीं देता। कृपा करके समझ लो कि ये तो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारे लाड़ प्यार के योग्य है। लेकिन कंस ने एक नहीं मानी। उस समय वसुदेव सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, किसी न किसी तरह से कंस को तो अवश्य रोकना चाहिए। तो वसुदेव ने सोचा कि ठीक है, मैं ये कह दूंगा कि मैं हमारे सारे पुत्रों को एक के बाद एक कंस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि भविष्य में क्या होगा कौन कह सकता है। हो सकता है कि कंस की मृत्यु जल्दी हो जाए, मेरे बच्चों का जन्म होने के पहले ही हो सकता है कंस मर जाए, कुछ हम कुछ कह नहीं सकते। इस तरह से वसुदेव ने कंस से कहा कि वसुदेव कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जैसे ही मेरे पुत्रों का जन्म होगा, वैसे ही इनको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उस समय कंस ने सोचा कि वसुदेव जैसे धर्मपरायण व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, तो कंस जैसे व्यक्ति का भी हृदय पिघल गया और कंस सोचने लगा कि ठीक है, वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया। उधर नारद मुनि ने आकर कंस को बताया कि हे कंस, तुम नहीं जानते कि ये देवताओं का षड्यंत्र है, तुम्हें और सारे असुरों को मारने के लिए, इसलिए जल्दी से जल्दी तुम्हें कुछ करना होगा, नहीं तो विष्णु स्वयं प्रकट होंगे और असुर कुल का नाश होगा। वास्तव में नारद देव और अन्य जो भी देवता थे जिनकी आकाशवाणी कंस को सुनाई पड़ी थी, वो चाहते थे कि कृष्ण भगवान जल्दी से जल्दी प्रकट हो जाएं इस धरातल पर, इसलिए उन्होंने ये तरकीब सोची थी। उधर कंस बड़ा क्रूर व्यक्ति था, दुष्ट था, एक के बाद एक वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया और देवकी बड़े शोक में थी। लेकिन आखिर में देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई। उस समय भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार योग माया ने गर्भ में जो बालक था, जो कि संकर्षण थे, स्वयं बलराम जी, उनको स्थानांतरित करके वृंदावन में वसुदेव की और एक पत्नी रोहिणी देवी के गर्भ में रख दिया। और फिर मथुरा में सभी लोगों ने सोचा कि देवकी का गर्भपात हो गया है। और थोड़े दिन बाद वहां बलराम जी का गोकुल में जन्म हुआ। जन्म तो क्या, आविर्भाव हुआ, वो प्रकट हुए। क्योंकि भगवान कभी उनका जन्म नहीं होता, नहीं उनका मरण होता है, वो केवल प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। और इस तरह से बलराम जी ने देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के प्रवेश करने के लिए तैयारी कर दी। और बताया जाता है श्रीमद् भागवत में कि वसुदेव के हृदय में भगवान श्री कृष्ण पहले प्रकट हुए, और जैसे ही प्रकट हुए तो वसुदेव सूरज के तरह चमकने लगे। उनके शरीर में जो तेज था वो इतना प्रभावशाली था कि कंस सोच लगे कि अवश्य कोई गड़बड़ है। उधर वसुदेव के हृदय से भगवान श्री कृष्ण स्थानांतरित हुए देवकी के हृदय में, और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में, और देवकी के गर्भ से तुरंत भगवान श्री कृष्ण बाहर प्रकट हुए। कृष्ण भगवान का जन्म किसी साधारण बालक के जन्म की तरह नहीं हुआ। हम जब जन्म लेते हैं तो हमें मां के गर्भ में 9 महीने रहना पड़ता है, नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि बच्चा इतना दुखी हो जाता है, उस पीड़ित अवस्था में भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, ये तो मेरे लिए नरक है, किसी न किसी तरह से यहां से मुझे मुक्त करा दें, और मैं वायदा करता हूं कि यहां से बाहर निकलने के पश्चात आपकी सेवा करूंगा, आपका भक्त बनूंगा। लेकिन जब बच्चा बाहर आ जाता है, माया के जाल में फंस जाता है, अपने वायदे को भूल जाता है और फिर वही संसार में अटक जाता है। हमें अपने कर्म के अनुसार अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं, अलग अलग तरह के माता पिता मिलते हैं, अलग अलग तरह के शरीर कुटुंब इत्यादि प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को चुनते हैं। केवल वो विशेष शुद्ध भक्त जो कि इस पात्र हैं, इस योग्य हैं, वही श्री कृष्ण या भगवान के माता या पिता बन सकते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण किसके पिता, किसके पुत्र हो सकते हैं? वो तो सभी के पिता हैं, सभी के माता हैं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं ही सभी का पिता हूं, मैं ही सभी का पितामह हूं, सारे जगत का। अहम बीज प्रदह पिता, बीज प्रदान करने वाला मैं ही हूं। लेकिन फिर भी भगवान अपनी कृपा बरसाने के लिए किसी ऐसे शुद्ध भक्तों को अपना माता और पिता स्वीकार कर लेते हैं। इसके पहले कि देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण बाहर प्रकट हुए, उस समय सारे देवी देवतागण कंस के कारागार में उपस्थित हुए और प्रार्थना अर्पण करने लगे भगवान श्री कृष्ण के प्रति, जो कि गर्भ में थे उस समय, और कहने लगे कि हे प्रभु, आपका यह अवतार लेना अवश्य आपकी कृपा है हम सबके ऊपर। हे देवकी देवी, कृपा अभी आपके भय को त्याग दीजिए, ये साक्षात श्री हरि हैं, आप कितने भाग्यशाली हैं और साथ साथ हम भी भाग्यशाली हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री हरि अभी हमारे बीच में थोड़े ही समय में प्रकट होने वाले हैं। देवकी उस समय इतनी तेजस्वी और सुंदर लग रही थीं, उनके शरीर में इतना तेज था, इतने प्रकाशमान लग रही थी वो, कि कंस ने जब देवकी को देखा तो तुरंत कंस समझ गया कि अवश्य मेरा परम शत्रु विष्णु अब देवकी के गर्भ में प्रवेश कर चुका है, नहीं तो देवकी के चेहरे पर इतना तेज ये साधारण अवस्था में संभव नहीं है। और ये सच्ची बात है, जब कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि की भक्ति करने लगता है, बुरे आदतों को त्याग देता है, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना आरंभ करता है, उसे भक्ति के रस की अनुभूति होती है, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, जिसके सामने ये संसार का जो भी भोग है वो तुच्छ लगने लगता है। और ऐसी अवस्था में भक्त के चेहरे पर एक तरह की चमक, एक तेज आने लगती है। प्रभुपाद जी जब पहली बार विदेश गए, अमेरिका गए थे, तो वहां के नौजवान और नवयुवतियां नाना प्रकार के पाप कर्म कर रहे थे, बड़े गंदे अवस्था में रहते थे, स्नान भी नहीं करते थे, नशीले पदार्थों का सेवन करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको भक्ति का अनमोल भेंट प्रदान किया। उस समय ये सारे नौजवान और नवयुवतियां हिप्पी कहलाते थे, लेकिन जब उन्होंने भक्ति मार्ग को स्वीकार किया तो प्रभुपाद ने कहा, ये अभी हिप्पी से हैप्पी बन गए हैं, खुश बन गए हैं, देखो इनके चेहरे को देखो, पहले कितने उदास दिखाई पड़ते थे, लेकिन अभी इनके चेहरे पे ये दिव्य आनंद दिखाई पड़ रहा है। ये है भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति करने का फल। तो अगर कोई साधारण जीव ऐसे भक्ति करके तेजस्वी बन सकता है, तो साक्षात भगवान की माता जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया हुआ है वो और कितनी तेजस्वी हुई होंगी। तो कंस जैसे असुर ने भी इस बात को पहचान लिया, जान गए कि अभी मेरा शत्रु आ गया है। लेकिन कंस सोचने लगे कि इस अवस्था में जबकि देवकी गर्भवती है इसको मारना अभी उचित नहीं है, मेरी बहुत बदनामी होगी और जो व्यक्ति क्रूर कहलाता है इस जन्म में और मरने के बाद लोग उसे धिक्कारते हैं और मृत्यु के बाद वो अंधतम नाम के नरक लोक में जाता है। देवकी स्त्री है, मेरी बहन है और गर्भवती है, तो इस हालत में देवकी को मार डालना ये उचित नहीं होगा मेरे लिए। हालांकि कंस देवकी की हत्या करना चाहते थे लेकिन फिर भी रुक गए और सोचने लगे कि मुझे उस घड़ी का इंतजार करना होगा जब इसके गर्भ से बालक बाहर प्रकट होगा। और कंस दिन रात उसी घड़ी का इंतजार करते रहे, दिन रात विष्णु के बारे में सोचने लगे, श्री हरि श्री कृष्ण के बारे में सोचने लगे, उठते बैठते खाते पीते हर समय चलते फिरते वही कृष्ण के बारे में सोचने लगे। अभी उसका जन्म होगा, कल होगा, परसों होगा, कब होगा, क्या होगा। इस तरह से कंस 24 घंटे भगवान का स्मरण करने लगे। वास्तव में जो व्यक्ति भगवान का 24 घंटे चिंतन मनन करता है वो तो भगवान का शुद्ध भक्त कहलाता है। मत चित्तः मत गतः प्राणा बोधयन्तस् परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भक्त कौन होते हैं पहचान लो इनको। मेरे भक्त वो होते हैं जो कि मुझे अपना प्राण धन समझते हैं, मेरे अलावा और कुछ जानते ही नहीं हैं, और परस्पर आपस में केवल मेरे बारे में चर्चा करते हैं, ये मेरे भक्त होते हैं और मेरे चर्चा में ही वो रमण करते हैं, इसमें आनंद लेते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो अगर इस परिभाषा के अनुसार इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो शायद कोई व्यक्ति सोच सकता है कि कंस भी तो 24 घंटे भगवान को का स्मरण कर रहा था, वो भी तो कृष्ण के बारे में बोले जा रहा था दिन रात अपने असुर मित्रों के साथ में, तो क्या कंस भी शुद्ध भक्त हो गया? नहीं, क्योंकि चिंतन मनन करना इतना काफी नहीं होता। श्रील रूप गोस्वामी एक महान भक्त हुए, वृंदावन के गोस्वामी जी, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य। उन्होंने परिभाषा दी है भक्ति की, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन शीलनम भक्ति रुच्यते। भक्ति क्या चीज है? भक्ति वो चीज है जिसमें हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं और सेवा के अतिरिक्त और कोई भी इच्छा हमारे हृदय में नहीं है, अन्य अभिलाषा शून्य, ये है भक्ति। और इसके लिए अनुकूल भावना होना चाहिए, लेकिन कंस के हृदय में भावना प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं थी, इसलिए कंस का स्मरण ये भक्ति नहीं कहलाता है, क्योंकि वो कृष्ण की हत्या करना चाहता था। इस तरह से दिन बीत गए और अंततः उसी तिथि पर 5000 वर्ष से ज्यादा पूर्व मथुरा के कारागार में भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से बाहर प्रकट हुए। सारे शुभ लक्षण प्रकट हो रहे थे वातावरण में, बड़ा रम्य वातावरण था सब जगह, नदियां बड़े मधुर ध्वनि करके बह रही थीं, सारे तालाब कुंडों में कमल पुष्प खिल रहे थे, जगह जगह में पक्षियां मधुर गीत गा रही थीं, सारे लोग प्रसन्न लग रहे थे सब जगह, ब्राह्मण भी, वो सब जगह यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के जल, यज्ञ के अग्नि जो है वो तो जला रहे थे सब जगह। आसानी से अग्नि जल रहा था, जो कि आज तक नहीं जल रहा था, क्योंकि कंस ने सबको बंद कर दिया था। और इस तरह से एक ऐसा मधुर और रम्य वातावरण तैयार हो गया। उस समय बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रकट हुए मानो पूर्णिमा का चांद। और वास्तव में उस समय पूर्णिमा की रात थी। अब आप सोचेंगे कि ये तो अष्टमी की रात थी, आज तो जन्माष्टमी मनाते हैं, तो फिर अष्टम अष्टमी के रात्रि में पूर्णिमा का चांद कैसे आ गया? लेकिन ये बहुत सुंदर बात है। भगवान श्री कृष्ण ने सोमवंश या चंद्रवंश में जन्म लिया, और चंद्र भगवान या चंद्रदेव सोमदेव ने देखा कि स्वयं भगवान श्री हरि मेरे वंश में प्रकट हो रहे हैं, तो इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि खुशी के मारे उन्होंने अपना पूर्ण रूप प्रकट किया, हालांकि वो अष्टमी थी। इस तरह से अष्टमी के रात्रि को भी पूर्णिमा का चांद दिखाई पड़ रहा था, और ऐसे लग रहा था कि स्वयं पूर्णिमा का चांद देवकी के गर्भ से प्रकट हो गया है। और पहले जब भगवान प्रकट हुए बाल रूप में, तो उनके चार भुजाएं थे, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और सुंदर कौस्तुभ मणि जो उनके लक्षण होते हैं, काले घुंघराले बाल, कमल नयन, और सारे उनके उनके चेहरे पर और उनके शरीर पर आभूषण, सुंदर सुंदर आभूषण। वसुदेव ने जब देखा इस बालक को तो आश्चर्यचकित हो गए, और विस्मित क्यों हुए? विस्मित इसीलिए हुए कि वो सोच रहे थे, ये तो श्री नारायण है, साक्षात श्री हरि प्रकट हुए हैं मेरे पुत्र के रूप में। इसीलिए सोचने लगे कि सबसे पहली बात आश्चर्य की तो ये है कि कंस के कारागर में, जो कि बहुत एक भयानक जगह है, यहां पर भगवान प्रकट हुए हैं। और दूसरी बात आश्चर्य की क्या है? कि वो मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, वास्तव में ये तो मेरे आराध्य देव हैं। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात आश्चर्य की ये है कि एक बालक होते हुए भी इसके पूरे पूरे बाल हैं और गहने हैं। और चौथी बात यह है कि इसके चतुर्भुज हैं। हम ऐसे चतुर्भुज बालकों का जन्म यहाँ बेलगाम में नहीं देखते हैं। हमेशा बच्चों का जन्म होता है तो दो हाथ लेकर ही बाहर आते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान चतुर्भुज रूप में आए तो इस रूप को देखकर वसुदेव बड़े आश्चर्यचकित हो गए और प्रार्थना अर्पण करने लगे। उधर देवकी माता भी बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति भाव से भगवान की ओर देख रही थी, लेकिन उनके भक्ति भाव में डर का भी मिलावट था, क्योंकि वो सोच रही थी कि जैसे ही कंस के सिपाहियों को पता चलेगा कि भगवान मेरे गर्भ से प्रकट हुए हैं, तो तुरंत कंस तक खबर पहुंच जाएगी और कंस आकर इनकी हत्या करेंगे। वास्तव में देवकी जानती थी कि ये स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी वात्सल्य की भावना थी, इसलिए सोच रही थी कि कंस इनकी हत्या कर पाएंगे। वास्तव में भगवान की हत्या कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वात्सल्य भाव में रहकर देवकी देवी सोच रही थी कि कंस के हाथों में भगवान की मृत्यु हो सकती है। इसलिए देवकी प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे प्रभु, कृपा करके इस रूप को कंस के आंखों से अदृश्य कर दीजिए, क्योंकि कंस बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, आके आपको कुछ कर, आपकी हत्या करने के लिए आ रहा है। उस समय भगवान ने सोचा कि मुझे एक साधारण बालक का रूप धारण करना चाहिए, और फिर दो हाथों का बालक का रूप उन्होंने धारण किया। इस तरह से भगवान सोच रहे थे कि अगर मैं चतुर्भुज रूप भगवान के मेरे भक्तों के सामने प्रकट करूंगा तो देवकी कोई आश्वासन हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगी कि मैं उनका पुत्र भगवान हूं, इसलिए वो भयभीत नहीं होगी। लेकिन देवकी सोच रही थी कि मैं ये चतुर्भुज रूप नहीं चाहती, क्योंकि कंस इसको देखेगा तो कंस दौड़ते हुए आएगा कि ये मेरे शत्रु आ गए हैं, और इसके अलावा अगर कोई लोग जानेंगे कि मेरे गर्भ से एक चार भुजाओं वाला बच्चा पैदा हो गया है तो मैं उपहास के पात्र हो जाऊंगी, कोई लोग इसका विश्वास नहीं करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए यही बेहतर है कि भगवान एक साधारण लौकिक बालक की तरह प्रकट हो जाए। तो भगवान ने देवकी और वसुदेव की इच्छा पूरी की, और उस तरह से वसुदेव ने बाल कृष्ण को उठा लिया, और जैसे उठा लिया और उठे तो उनके शरीर पे सारे जो जंजीर थे वो सब गिर पड़े, और बाल कृष्ण को उठाकर वो चले गोकुल की ओर, अपने सर में टोकरी रखी और टोकरी में कृष्ण को, और चलते गए। उधर जिस तरह से समुद्र में एक मार्ग दिया था प्रभु रामचंद्र जी को लंका पहुंचने के लिए, ठीक उसी तरह से वसुदेव को यमुना जी ने रास्ता दिया। और बताया जाता है कि जैसे यमुना पार कर रहे थे वसुदेव, उस समय उनके टोकरी से बाल कृष्ण जल में गिर पड़े, और जैसे ही गिर पड़े जल में तो वसुदेव चिंता के मारे, शोक के मारे प्राय पागल हो गए, इधर उधर ढूंढते रह गए कि कहां गए मेरा कृष्ण, कहां गया। वास्तव में ये लीला थी भगवान कृष्ण की, क्योंकि यमुना जी के हृदय में इच्छा थी कि मैं किसी न किसी तरह से मेरे जल से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अभिषेक करूं। यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने सोचा कि मेरा तो एक ही काम है, मेरे भक्तों की इच्छा को पूर्ण करना, तो यमुना जी चाहती हैं तो ठीक है, उलट पड़े गिर पड़े जल में। वसुदेव को पता नहीं चला कि ये कैसे हो गया, लेकिन हो गया। और जब यमुना जी की इच्छा पूरी हो गई तो वसुदेव को कृष्ण मिल गए, और उन्होंने कृष्ण को फिर से आलिंगन किया, अपने टोकरी में रख दिया, और फिर से पहुंच गए गोकुल। जब पहुंचे नंद महाराज के घर में तो उन्होंने देखा कि वहां पर यशोदा देवी थक कर सो रही हैं, उनके बगल में एक कन्या है, एक पुत्री है, और कृष्ण को वहां रखा यशोदा देवी के पास में, उस कन्या को उस बच्ची को उठा लिया और लौट कर आ गए गोकुल में। जब लौट कर आए और जैसे ही अंदर आए तो उन्होंने अपने हाथों में जंजीर बांध दिए, और बच्ची जब रोने लगी उस समय कंस तक खबर पहुंच गई, और कंस कहने लगे अब यही काल जो मेरे मृत्यु का रूप है आया है, तलवार लेकर दौड़े कारागर की ओर, और जैसे ही उस बालिका को पैर से पकड़े उठाया और नीचे पत्थर पर पीट कर मारने का प्रयत्न किया तो बालिका वो कन्या कंस के उंगलियों से हाथों से छूट कर ऊपर उड़ गई। वो वास्तव में योग माया थी, ऊपर आकाश में उड़कर अष्टभुज रूप धारण किया, और इन आठ भुजाओं में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। और योग माया ने कहा कि अरे मूर्ख कंस, तुम इतने क्रूर हो कि अपनी बहन देवकी को इतना कष्ट दे रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि वास्तव में भगवान श्री हरि श्री विष्णु जो कि तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं अभी और कहीं जन्म ले चुके हैं, इसलिए तुम क्यों इस बेचारी देवकी को तंग कर रहे हो। इस तरह से योग माया वहां से अदृश्य हो गई। उधर कंस सोचने लगे कि ये क्या हो गया। बड़ा पश्चाताप हुआ कंस को। फिर से लौट के आए वसुदेव और देवकी के पास और वहां पर उनके पैर पड़े और कहने लगे कि मैं तो बड़ा राक्षस था क्योंकि मैंने आपके 6 बच्चों की हत्या इस तरह से की। बड़ा पापी हूं, बड़ा क्रूर व्यक्ति हूं मैं, लेकिन मैं क्या करूं। मैंने आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी देवताओं की वाणी है। मनुष्य समाज में लोगों को झूठ बोलना ये एक आदत सा बन गया है, लेकिन हाय ये क्या परेशानी है कि देवलोक में भी आजकल झूठ बोलने लगे हैं। इन्होंने कहा कि देवकी का 8वां पुत्र मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन मैं देखता हूं कि ये तो पुत्री है, ये कन्या है और ये तो साक्षात दुर्गा देवी है, इसलिए मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हुआ है। अभी देवकी और वसुदेव तो जानते थे कि कृष्ण अभी सुरक्षित हैं गोकुल में नंद महाराज के पास, इसलिए उनको चिंता नहीं हुई। उनका क्रोध, उनका गुस्सा मिट गया और पुनः कंस के प्रति अनुकूल दृष्टि से देखने लगे योग माया के प्रभाव से। उधर कंस लौटकर अपने मित्रों के पास गए। एक से बढ़कर एक दुष्ट असुर थे कंस के मित्र, तो उनसे चर्चा करने लगे कि कारागर में क्या घटना हुई थी। प्रलंबासुर, अरिष्टासुर इत्यादि ऐसे भयानक बकासुर, वत्सासुर, ये सारे वहां पर इकट्ठे हुए और जब उन्होंने घटना का वर्णन सुना तो सभी लोग कहने लगे कंस से कि हे राजा, आपको किस बात का डर है? आप बिल्कुल फिक्र न करें, देवताओं से आपको किसी भी बात की डर नहीं है। देवता तो आपके धनुष के ध्वनि से घबराते हैं। जैसे ही आपके धनुष की आवाज आती है तो इधर इधर बिखर जाते हैं वो डर के मारे। क्या आपको याद नहीं है कि जब आपने देवताओं के ऊपर तीर छोड़े थे किस तरह से वो इतर तितर हो गए थे, अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे थे, और उनमें से कई आपके सामने आए, हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे कंस, तुम बहुत शक्तिशाली हो, हम तुमसे घबरा रहे हैं। और क्या तुम्हें याद नहीं कंस, यही देवी देवता जो हैं, वो जब अपने अस्त्र छोड़ देते थे, जब उनका रथ नष्ट हो जाता था या वो जब भयभीत हो जाते थे, तब तुम उनको नहीं मारते थे, उनको छोड़ देते थे। तो भला ये देवतागण तुम्हारे क्या बिगाड़ सकते हैं? और जहां तक ब्रह्मा जी का सवाल है, ब्रह्मा जी तो हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, तपस्या करते हैं, और शिव जी तो हमेशा जंगल में रहते हैं, वो क्या करेंगे। और जहां तक विष्णु का सवाल है, विष्णु तो छुपे हुए हैं योगियों के हृदय में, अपने भक्तों के हृदय में वो छुप गए हैं, वो वहां रहते हैं, इसलिए वो भी हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। और इतर जो और देवता हैं, उनसे क्या डरना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी न किसी तरह से विष्णु के आधारित संस्कृति को नष्ट करें, क्योंकि देवताओं के मूल विष्णु हैं और विष्णु वहां निवास करते हैं और वहां पूजे जाते हैं जहां ब्राह्मण यज्ञ कर रहे होते हैं, जहां पर गवों की सेवा होती है, गायों की सेवा होती है, जहां पर वैदिक शास्त्रों का पाठ किया जाता है, जहां वैदिक सभ्यता विद्यमान है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम ब्राह्मणों की हत्या करें, गायों की हत्या करें, तो फिर गाय का दूध नहीं मिलेगा, यज्ञ संपन्न नहीं कर पाएंगे, और ब्राह्मण नहीं होंगे तो यज्ञ कौन करेगा, और गाय का दूध नहीं होगा तो घी नहीं बनेगा, और घी नहीं बनेगा तो यज्ञ कहां से होंगे, और जब यज्ञ खत्म हो जाएंगे, ब्राह्मण और वैष्णव खत्म हो जाएंगे, गाय खत्म हो जाएंगी, तो फिर विष्णु भी मर जाएंगे, विष्णु रह नहीं पाएंगे। इस तरह से हमें चाहिए कि हम सबसे पहले वैष्णवों को खत्म करें, जिससे कि भगवान विष्णु की हत्या हो सकती है। इसलिए हम जगह जगह जाएंगे, सारे गांव में, शहरों में, गोष्ठों में, और पिछले 10 दिन में जिन बच्चों का जन्म हुआ है हम सब उनकी हत्या करेंगे। तो ऐसा निर्णय लिया इन असुरों ने, और सब जगह छा गए सारे ब्रज में, और इस तरह से कंस के क्रूर कार्य आरंभ हुए। एक के बाद एक वृंदावन में कंस असुर भेजते गए, और कृष्ण भगवान ने पूतना से लेकर आगे कितने सारे असुरों का वध किया, और अंततः कृष्ण भगवान जब बड़े हुए तो कृष्ण ने ही कंस का वध अपने हाथों से किया। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जब यहां प्रकट हुए इस धरातल पर, तो उन्होंने इतने सुंदर सुंदर लीलाएं प्रकट किए केवल हमारा मन आकर्षित करने के लिए, और कोई कारण नहीं था उसके लिए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बाल रूप में वृंदावन के निवासियों का हृदय उन्होंने जीत लिया। जब भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे तो देवकी को कोई कष्ट नहीं हुआ था। जब साधारण मनुष्य संसार में जन्म लेता है तो माता को बहुत कष्ट होता है और बच्चे को भी कष्ट होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो उनको कोई कष्ट नहीं हुआ और नहीं देवकी माता को। क्यों? क्योंकि भगवान केवल अंदर से बाहर प्रकट हुए, बस उनका जन्म नहीं हुआ। एक क्षण वो अंदर थे, दूसरे क्षण बाहर प्रकट हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म को वास्तव में जन्म नहीं कहते, इसको प्राकट्य कहते हैं। आचार्य बताते हैं कि जिस तरह से सूरज का उदय होता है और फिर सूर्यास्त हो जाता है, ठीक उसी तरह से भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। जब हम सूर्योदय देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि सूरज का जन्म हुआ है। सूरज तो हमसे पहले था, और सूर्यास्त के बाद भी सूरज नष्ट नहीं होता, सूरज वैसे का वैसे रहता है, लेकिन कहीं और सूर्योदय हो जाता है, और ठीक उसी तरह से फिर वहां पर सूर्यास्त हो जाता है, और फिर और कहीं सूर्योदय हो जाता है। इस तरह से सूर्योदय और सूर्यास्त ये चलते रहते हैं। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण हमेशा रहते हैं, किसी जगह में, किसी ब्रह्मांड में वो प्रकट होते हैं, थोड़े समय के लिए रहते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं प्रकट करते हैं, और इसके बाद में वो अप्रकट होकर किसी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और वहां पर जाके और फिर वो सुंदर सुंदर प्रार्थना लीलाएं करते हैं, और इस तरह से बाल रूप में एक साधारण बच्चे की तरह घूमते फिरते हैं। साधारण बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं वैसे कृष्ण भगवान व्यवहार करते थे वृंदावन में, और ब्रजवासी ये कभी नहीं सोचते थे कि ये भगवान है। हमेशा यही सोचते थे कि ये तो एक बच्चा है। माता यशोदा नंद महाराज हमेशा सोचती थी कि हम कृष्ण का संरक्षण नहीं करेंगे तो कृष्ण के लिए खतरा है, कृष्ण मर सकते हैं, इतने असुर आ रहे हैं, कृष्ण को कोई बीमारी हो सकती है। लेकिन कृष्ण भगवान ने इस लीला में, ऐसे संबंध में ज्यादा आनंद लिया। कृष्ण भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनियों से जब वैदिक प्रार्थना सुनते हैं तो उतना आनंद उनको नहीं होता जितना कि उनको तब होता है जबकि उनकी माता यशोदा उनको डांटती हैं, या जब वो अपने ग्वालवाल मित्रों के साथ में लाख जाकर कुश्ती करते हैं। ये अद्भुत से अद्भुत मधुर लीलाएं केवल कृष्ण अवतार में हैं, और किसी भी अवतार में ऐसे मधुर लीला नहीं होती। अन्य हरेक अवतार में भगवान हमेशा अपने आप को भगवान के रूप में पेश करते हैं, एक तरह का ऐश्वर्य रहता है, उनके निकट कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, इनकी लीला इतनी मधुर है कि सारे ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण सूरज की तरह प्रकट हुए और सूरज के समान ही सुंदर सुंदर थोड़े समय के लिए रहे, सुंदर लीलाएं किए और फिर अप्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण नित्य नव नवायमान है, हमेशा एक नव युवक की तरह उनका चेहरा होता है, उनका शरीर। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय उनकी आयु 125 साल की थी, लेकिन उस समय भी वो केवल एक 16 वर्ष के नव युवक जैसे दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि उनका शरीर दिव्य है, सच्चिदानंद है। उनका शरीर हमारे जैसा शरीर नहीं है, हमारे शरीर और आत्मा में अंतर होता है, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता। भगवान का शरीर दिव्य पदार्थों से बना हुआ होता है। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण यहां आते हैं और साधारण व्यक्ति की तरह लीला करते हैं तो हमें गलत नहीं समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में घोषणा करते हैं, अवजानंति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम, कि हे अर्जुन, जो अज्ञानी होते हैं मुझे एक साधारण व्यक्ति समझते हैं, लेकिन वास्तव में मैं सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी हूं, सर्वलोक महेश्वरम। जो व्यक्ति मुझे पहचानता है, मुझे जान लेता है, वो व्यक्ति मेरा भजन करता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेना ये बहुत ही विशेष घटना है। हम सब को इस अवसर पर भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनके सुंदर सुंदर लीलाओं का कथन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, और इस तरह से भगवान के भक्तों के संग में आकर दिव्य आनंद की अनुभूति हमें करनी चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो सारे लोग वृंदावन के उनसे इतना प्रेम करते थे कि उनको पता नहीं चलता था कि कृष्ण को हम इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं। वास्तव में कृष्ण का स्वभाव ही ऐसा है, जो कृष्ण का भक्त बन जाता है उसका हृदय पूरी तरह से कृष्ण भगवान जीत लेते हैं, हर लेते हैं। इसलिए उनका नाम है हरि, जो हमारा सब कुछ हरण कर लेते हैं। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अगर कृष्ण की भक्ति करने लगे तो वो भी शुद्ध होकर भगवान का भक्त बन सकता है। कलयुग में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके हृदय में दुष्ट विचार नहीं है। एक बार एक चोर था, वो चोर कई दिनों से कुछ चोरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए बड़ा दुखी था। और एक बार घूमते फिरते वो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के संग के पास आया। ये कृष्ण भगवान के समय की बात है, और जैसे ये लोग बात कर रहे थे कृष्ण भगवान का वर्णन कर रहे थे। कोई उनके मुखारविंद का वर्णन करता, कोई उनके बांसुरी के बजाने का, कोई उनको उनके कमल नयन का। अलग अलग लोग जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग अंगों का वर्णन कर रहे थे, उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। और जब एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण के चेहरे के ऊपर, शरीर के ऊपर जो गहने हैं उनका वर्णन करना आरंभ किया, तो उस समय इस चोर के कान जो हैं वो सीधे हो गए। ये गहने की बात हो रही है, सोने चांदी की बात है, अनमोल रत्नों की बात है, तो ये मेरे इंटरेस्ट की बात है। पहले जो बोल रहे थे कान और ऐसे आंखें हैं, ऐसे मोती जैसे दांत हैं, इससे मुझे क्या लेना देना है। जब सोना चांदी रत्न की बात करते हैं तब कुछ काम की बात हो जाती है। तो सुनने लगे बड़े ध्यान से, क्योंकि कृष्ण भगवान के पास में इस शरीर पर इतने अनमोल रत्न होते हैं कि कोई भी चोर इनसे आकर्षित हो जाता है। तो ये चोर सोच रहा था कि मुझे ये रत्न चोरी करने चाहिए, और इसलिए वो ध्यान से सुनने लगे कि ये कौन है बच्चा, इसका वर्णन भला अच्छी तरह से सुने तो सही। तो सुनने लगे कि कृष्ण दिखने में कैसे हैं। ध्यान से सुन रहे थे, उनके बाल ऐसे हैं, उनके आंख ऐसे हैं, पीतांबर पहनते हैं, बांसुरी है उनके पास में इत्यादि, और कहाँ रहते हैं, गोकुल में रहते हैं। इस तरह से बड़े ध्यान से सुना और गोकुल की ओर चल पड़े। और चलते चलते वो हमेशा स्मरण कर रहे थे कि कहीं वो भूल ना जाए कि जो वर्णन उन्होंने सुना है, ऐसा न हो कि गोकुल पहुंचकर वो कृष्ण को खोज नहीं निकाल पाए, क्योंकि उन्हें स्मरण नहीं कि कृष्ण कैसे दिखते हैं। इस डर से चलते चलते हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हुए जा रहे थे और बारंबार कृष्ण के नाम का उच्चारण करते रहे। इस तरह से पहुंचते पहुंचते उनका हृदय काफी शुद्ध हो गया था। और जब वो गोकुल में पहुंचे, कृष्ण को ढूंढ निकालना कठिन नहीं था, क्योंकि कृष्ण भगवान सारे ब्रजवासियों के जीवन के केंद्र थे। कृष्ण को अलग ले गए वो चोर और कहने लगा कि अरे बच्चे, तुम्हारे पास तो बहुत सुंदर सुंदर गहने हैं, जरा मुझे एक दो तो दे दो। नहीं नहीं नहीं, मेरी माता जी मुझे डांटेंगी, ये लो थोड़े पेड़े ले लो। तो ऐसे बातचीत करते करते जब ये चोर कृष्ण का दिव्य सौंदर्य देख रहा था, कृष्ण की वाणी सुन रहा था और कृष्ण के बारे में चिंतन मनन कर रहा था, वास्तव में उसके हृदय में जो भी चोरी की भावना थी वो खत्म हो गई और भक्ति की भावना हृदय में जागृत हो गई। पूरी तरह से चोरी की भावना त्याग कर कृष्ण के भक्त बन गया वो। वास्तव में ऐसे कई सच्ची कहानियां भी हैं। एक दूसरे शहर में हमारे इस्कॉन के मंदिर में एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के समय चोरी करने आया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है, ऐश्वर्यशाली मंदिर है, मार्बल का बना हुआ है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो वो आया वहाँ चोरी की दृष्टि से, वहाँ प्रभुपाद जी का भजन सुना, कीर्तन सुना, प्रभुपाद का प्रवचन सुना, श्री श्री राधा रास बिहारी जी का दर्शन किया, वहाँ प्रसाद का सेवन किया, कुछ अच्छा लगा, लेकिन फिर भी चोरी की भावना हृदय से गई नहीं। सोच रहे थे आज नहीं कल करेंगे, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा आनंद लूट लेते हैं, क्योंकि एक बार चोरी करूंगा तो लौट कर नहीं आ पाऊंगा यहाँ पर। तो पहले दिन चोरी नहीं की। दूसरे दिन आए तो प्रभुपाद जी वहाँ प्रवचन दे रहे थे कई दिनों। दूसरे दिन भी बैठे, बड़ा अच्छा लगा, प्रभुपाद जी इतने जोरदार से प्रवचन कर रहे थे, तो सोचा आज भी चोरी नहीं करते, आज के लिए भी मामले को टाल देते हैं। इस तरह से वो पूरी तरह से चोरी की भावना भूल गए और प्रभुपाद जी के शरण में जाके कहने लगे, मैं आपके शरण में हूँ, वास्तव में मैं चोर हूँ, मैं चोरी के दृष्टि से इस हेतु यहाँ आया था, लेकिन जब से मैंने आपके प्रवचन सुने, आपके बारे में आपके मुख से कृष्ण के बारे में सुना, भगवान का सुंदर दर्शन किया और यहाँ का सुंदर प्रसाद मैंने इसका आस्वादन किया, तब से मेरे हृदय में चोरी की भावना नष्ट हो गई, अब मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए, उस व्यक्ति को स्वीकार किया और 30 साल के बाद आज भी वो व्यक्ति अच्छे भक्त हैं, नियमों का पालन करते हैं, आज भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, हर रोज मंदिर में आते हैं, प्रभुपाद के दीक्षित भक्त हैं। तो देखिए कृष्ण भक्ति का चमत्कार, जो भी भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आता है वो शुद्ध होकर ही रहता है। जिस तरह से जब लोहे को हम अग्नि में डालते हैं तो लोहे को अग्नि के गुण आ जाते हैं स्पर्श के माध्यम से, तो उसी तरह से जब हम भगवान श्री कृष्ण से स्पर्श करते हैं तो वही दिव्य गुण हमारे अंदर भी आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श हम कैसे कर सकते हैं? उनके नाम का उच्चारण करके, उनके भक्तों का संग करके और उनसे भगवान की कथा सुन के। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपना संग देते हैं सभी भक्तों को, और ऐसे संग से हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है। कलयुग के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए एक ही उपाय है, और वो है हरि नाम का संकीर्तन। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगह परम व्रजेत। वो कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, ये कलयुग दोषों का सागर है। जहां भी हम देखते हैं हमें दोष ही दोष नजर आते हैं, कोई अच्छे गुण दिखाई नहीं पड़ते। ये वास्तव में सच्ची बात है। आजकल दो लोग भी प्रेम से ज्यादा समय रह नहीं सकते। दो देशों की बात तो दूर है, दो समाज की बात दूर है, दो परिवारों की बात दूर है, क्योंकि ये कलयुग है। छोटी छोटी चीजों पे बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, तो हर जगह दोष। हमें दूसरों के अच्छे गुण नहीं दिखाई पड़ते, हमें केवल उनके दुर्गुण दिखाई पड़ते हैं। तो यह कलयुग का स्वभाव, हर एक व्यक्ति का स्वभाव ऐसे हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहने लगे कि वास्तव में यह दोषों का सागर है, और जो व्यक्ति इस दोष के सागर में तैर रहा है वो दूसरों में तो दोष देखेगा ही, लेकिन उसके अंदर भी कितने सारे दोष होंगे। लेकिन फिर भी हे राजन, इस दोषों के सागर में एक महान गुण है, एक नौका है जिसमें बैठकर हम इस दोष के सागर को पार कर सकते हैं, और वो क्या है? वो है कृष्ण के नाम का संकीर्तन। और ऐसे कृष्ण के नाम का संकीर्तन करने के बाद में हम इस भौतिक संसार की आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं और भगवान के धाम में लौट के जा सकते हैं। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगह परम व्रजेत। तो जन्माष्टमी के अवसर पर आकर हमें भगवान के पवित्र नाम का जाप शुरू करने का एक संकल्प लेना चाहिए, और अगर हम पहले से ही जाप कर रहे हों तो हमें और भी दृढ़ता से करने का संकल्प लेना चाहिए, और इस तरह से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। भगवान का नाम चिंतामणि है। चिंतामणि रस विग्रह, ये जो पूर्ण रस का विग्रह है हरि का नाम, और जो ये हरि का नाम का लेता है, इस अमृत का पान करता है, उसे इस दिव्य आनंद की प्राप्ति हो जाती है। एक बार एक संत थे जिनका नाम है सनातन गोस्वामी, वो भी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, वृंदावन में रहते थे। तो एक बार एक व्यापारी उनके पास में आए, उन्होंने सुना था कि सनातन गोस्वामी के पास एक चिंतामणि है, और ये चिंतामणि क्या वस्तु है? चिंतामणि एक ऐसी वस्तु है जो कि सोने को पैदा कर सकती है, स्वर्ण को। जिस वस्तु का स्पर्श करती है वो उस वस्तु को सोना बना डालती है। तो इस व्यापारी ने सुना था कि इस सनातन गोस्वामी नाम के साधु के पास ऐसी चिंतामणि है, तो वहां पर गए और सनातन गोस्वामी से कहने लगे, महात्मा जी आप तो साधु हैं, हमने सुना है कि आपके पास एक चिंतामणि है, और साधु होने के नाते आपको ऐसे चिंतामणि की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वैरागी हैं, वृंदावन में रहते हैं, तो सोने चांदी से आपको कोई मतलब नहीं है, तो कृपा करके मेरे ऊपर आशीर्वाद करके वो चिंतामणि मुझे दे दें। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, ठीक है ले लो, वहां पर पड़ा है, देखो वहां कचरे का डब्बा है, वहां पर पड़ा है। अरे चिंतामणि कचरे के डब्बे में? कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना, कचरे के डब्बे में हो या कहीं हो, चिंतामणि मिले उतना बहुत हमारे लिए है। सोचकर वो व्यापारी उस कचरे के डब्बे में से चिंतामणि उठाया और तुरंत उसको परख के देखा, एक पत्थर से स्पर्श किया, पत्थर सोना बन गया। अरे तो खुशी के मारे इधर उधर जाके उस चिंतामणि को सब जगह स्पर्श करने लगा, और जिस वस्तु को वो स्पर्श करता उसे सोना बन जाता। खुशी से पागल हो गया, कूदता हुआ उछलता हुआ लौट के गया अपने घर में, और अपने घर को घर में सब कुछ सोना बना दिया। और इस तरह से दिन बीत गए। बहुत सोना हो गया उसके पास, इतना सोना हो गया कि कोई गिनती नहीं थी उसकी। फिर एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि वो महात्मा जी जिनसे मैंने ये चिंतामणि लिया है, उसने मुझे चिंतामणि इतनी आसानी से दे दी, और इतना ही नहीं, उस महात्मा ने इस चिंतामणि को कचरे के डब्बे में डाल दिया। इसका मतलब ये होगा कि उस महात्मा जी के पास इस चिंतामणि से ज्यादा कोई मूल्यवान वस्तु है, नहीं तो मुझे वो चिंतामणि क्यों देते। आत्मवान मन्यते जगत, हम जैसे होते हैं हम सोचते हैं कि दूसरे भी हमारे जैसे हैं। अगर हम भौतिक हैं, लोभी हैं, तो हम सोचते हैं दूसरे भी हमारे जैसे लोभी होंगे। तो ये व्यापारी सोच लगा कि चिंतामणि के ज्यादा कोई और मूल्यवान भौतिक वस्तु होगी सनातन गोस्वामी के पास, तो फिर मुझे वो चाहिए। लोभ का ये स्वभाव होता है कि जो व्यक्ति लोभी होता है कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। जितना भी धन, जितना भी कुछ उसके पास हो, हमेशा असंतुष्ट रहता है, उसे और चाहिए और चाहिए। तो फिर खैर वो गया उनके पास में और कहने लगा, महात्मा जी मेरे मन में एक विचार आया कि आपने ये चिंतामणि कचरे के डब्बे में डाल दी और मुझे दान दे दी, इसका मतलब है कि आपके पास कोई और ऐसे अनमोल रत्न है जो कि इस चिंतामणि से अधिक मूल्यवान है। क्या यह सही है, और क्या आप इस रत्न को मुझे दे सकते हैं? तो सनातन गोस्वामी ने कहा, अवश्य मैं दे सकता हूं। मेरे पास एक ऐसा रत्न है जिसके सामने ये संसार के सारा सोना चांदी बिल्कुल तुच्छ है। अच्छा, तो फिर मुझे दे दीजिए। नहीं, इसके लिए शर्त है, तुम्हें ये चिंतामणि जाके जमुना जी के जल में फेंक देना होगा, तब तुम इस दूसरे मेरे पास जो धन है उसको प्राप्त करने के योग्य हो जाओगे। हृदय कांपने लगा, अब क्या करें, चिंतामणि को फेंके, कैसे फेंक सकते हैं, इतना सोना पैदा करने वाला ये है चिंतामणि, और ये साधु कह रहे हैं कि इसको फेंक दो नदी में। लेकिन फेंके बिना इससे अधिक जो मूलवान वस्तु है वो नहीं मिलेगा, और ये साधु हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, अवश्य अपना वायदा पूरा करेंगे। तो खतरा है, लेकिन फिर भी नाप तोल के देखा, विश्लेषण करके देखा, एनालिसिस करके देखा, सोचा कि ठीक है चलो रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि आखिर साधु है। तो जाके बड़े भारी हृदय से आंख बंद करके यूं करके फेंक दिया पानी में, और फिर सांस को पकड़ते हुए आए सनातन गोस्वामी के पास। स्वामी जी, मैंने पत्थर फेंक दिया है, अभी कृपा करके मुझे वो अनमोल रत्न दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, हाँ बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें देता हूं वो अनमोल रत्न। ध्यान से सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वामी जी मैंने पत्थर फेंक दिया है, मजाक मत कीजिए मेरे साथ में। नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है, ये वास्तव में अनमोल रत्न है, इस रत्न को स्वीकार करो, भगवान का नाम लो। श्री कृष्ण का नाम इतना मीठा है, इतना मधुर है, इतना आनंद आता है इस नाम लेने से कि तुम ये संसार के चिंतामणियों को भूल जाओगे। इसलिए इस चिंतामणि को स्वीकार करो, ये हरि नाम के चिंतामणि को स्वीकार करो, इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, दिव्य आनंद की प्राप्ति करोगे। और इस तरह से सनातन गोस्वामी ने उस व्यापारी को हरि नाम सिखाया, और धीरे धीरे से उसे हरि नाम के अंदर रुचि आने लगी। तो इस कलयुग में ये एक ही रास्ता है, और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है वो अपने जीवन को बहुत आसानी से सफल बना सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब एकत्र होकर श्री कृष्ण की सेवा करें, जगत का कल्याण करने के लिए एकमात्र यही उपाय है। सारे विश्व भर में आजकल कितना संकट है, इतना उपद्रव फैल गया है सब जगह, इतना उत्पात है, हर जगह कष्ट, हर जगह झगड़े, खून खराबा, तो कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति यही एकमात्र सुझाव उपाय है सारे ब्रह्मांड के लिए। इसलिए कृपा करके आप सब इस भक्ति के मार्ग को स्वीकार करें। भक्ति स्वीकार करने के लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं, संस्कृत के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ऊंचे शिक्षण की आवश्यकता नहीं, ऊंचे जाति की आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति ये भक्ति मार्ग में आ सकता है, शिक्षित अशिक्षित, बूढ़ा जवान, बच्चा स्त्री पुरुष, किसी भी जाति से, किसी भी देश से, किसी भी कौम से, समाज से। ये है असली यूनाइटेड नेशंस, जहां पर हर तरह के लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रांतों से आकर केवल एकाग्र चित्त से श्री कृष्ण का भजन करते हैं। और इस आंदोलन को फैलाने के लिए वही श्री कृष्ण 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और उन्होंने यह हरिनाम का संकीर्तन का आंदोलन आरंभ किया और इस हरे कृष्ण महामंत्र को सब जगह फैलाया। और आधुनिक काल में उनके शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी देश विदेश में जाकर उन्होंने यह हरे कृष्ण आंदोलन को फैलाया। आज ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर यह हरे कृष्ण महामंत्र गूंज नहीं रहा हो। ऐसा कोई देश नहीं है जहां लोगों ने भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के बारे में नहीं सुना होगा। केवल एक व्यक्ति ने यह चमत्कार कर दिखाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति की, तो कृष्ण भगवान ने उनको ऐसी विशेष शक्ति प्रदान की जिससे कि उन्होंने ऐसे चमत्कार करके दिखाया। आज हमारे सारे जगत में यही एक चीज का अभाव है, शुद्धता। अगर हम सब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे तो बड़े प्रेम से हम सब आपस में रह पाएंगे और दिव्य आनंद की अनुभूति करते करते अपने मनुष्य जीवन को सफल बना पाएंगे और मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम में हम लौटकर जा पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आए हमारे यहां पर और उन्होंने धन राशि जमा की। यहां पर कौन सी धन राशि? हरे कृष्ण महामंत्र के बैंक में उन्होंने धन राशि जमा कर दी। उन्होंने 50,101 हरे कृष्ण महामंत्र लिखे कागज के ऊपर और वो कागज यहां लाए तो हमने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण किया। और इससे आज से हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का बैंक शुरू कर रहे हैं। तो आप में से जो अमीर धनी होना चाहते हैं, जल्दी से आइए इस बैंक में जमा कीजिए। देखिए बहुत जल्दी आप धनी हो जाएंगे। कृष्ण भक्त बनिए, फिर देखिए क्या चमत्कार हो जाता है। हमारे संस्था के एक भक्त हैं जो सारे रेलवे स्टेशन में अलग अलग शहरों में जाकर एक टेबल के ऊपर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से बोलने लगते हैं, किसको अपनी आमदनी को दुगना करना है? अगर कोई व्यक्ति अपने आमदनी को दुगना करना चाहता है तो जल्दी जल्दी मेरे पास आओ। तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो नहीं जाएगा उनके पास? तो बहुत ही जल्दी भीड़ इकट्ठी हो जाती है जहां वो जाते हैं और फिर वो गीता का प्रवचन बोलना आरंभ करते हैं और आखिर में बोलते हैं, मांस खाना छोड़ दो, जुआ करना छोड़ दो, बीड़ी सिगरेट खाना छोड़ दो, नशीली पदार्थ सेवन करना छोड़ दो और भगवान का नाम जप करो, कृष्ण भक्तों के संग में आओ, देखोगे कि तुम्हारा खर्चा आधा हो जाएगा। खर्चा आधा हो गया मतलब आमदनी दुगनी हो गई, इसलिए तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मन की स्थिति ठीक रहेगी, तो कृष्ण भक्ति करने में बहुत फायदा है। फिर लोगों को माला देते हैं, जप कराते हैं, इस तरह से हमें भी धनी बनना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके आध्यात्मिक दृष्टि से धनी। तो आप में से जो भी इस हरे कृष्ण महामंत्र के बैंक में आपका खाता खोलना चाहते हैं, आप शुरू कर दीजिए। किसी भी खाली खाते में, नोटबुक में, डायरी में, कागज में आप लिखते जाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
दोनों के गणना के अनुसार हमें ये तात्पर्य मिलता है कि दोनों के विचार कुविचार थे, पर यहाँ पे भगवान ने वो चोर को भक्ति प्राप्त की, उनकी प्रेम प्राप्त किया, पर कौन से के विचार यानी उनके जो चित्त में भगवान को मारने का, उनको क्यों नहीं शुद्ध भक्ति बनाने।
अच्छा प्रश्न है, दोनों में अंतर क्या था? कंस के हृदय में द्वेष था, ईर्ष्या थी, चोर के हृदय में द्वेष नहीं था, वो केवल लोभी था, भोगी था। लेकिन कृष्ण के प्रति हृदय में द्वेष विचार नहीं था, कंस के हृदय में था, जिस तरह के दुर्योधन के हृदय में था। इसलिए दुर्योधन जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर सका कि कृष्ण भगवान है, और कृष्ण की भक्ति नहीं कर सका, क्योंकि उसके हृदय में जलन था, ईर्ष्या और द्वेष का जलन की अग्नि, प्रज्वलित अग्नि जल रही थी। लेकिन अर्जुन के हृदय में प्रेम था, इसलिए भगवान को समझ पाए। तो यह है अंतर कंस में और उस चोर में। अगर एक चोर भी आकर ऐसे सुधर सकता है, तो जो व्यक्ति मंदिर में अनुकूल भावना लेकर, भक्ति भावना लेकर आता है, उसका कितना उद्धार हो जाएगा। देखिए, यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है। और कोई प्रश्न?
अवरीशेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीरा। विभावरीशेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हय ग्रीव। नृसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेन्द्र नंदन श्याम। नृसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेन्द्र नंदन श्याम। भूतन घातन कैतभ शातन जय दशरथि राम। यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर। गोपी प्रिया जन राधिका रामण, भुवन सुंदर भर। रावणांत तकर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्र हारे ब्रजर राखाल गोप वृंद पाल चित्त हरि वंशी धारि चित्त हरि वंशी धारि योगिंद्र वंदन श्री नंद नंदन ब्रज जन भय हारि योगिंद्र वंदन श्री नंद नंदन ब्रज जन भय हारि नवीन निरग रूप मनोहर नवीन निरग रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी मोहन वंशी बिहारी यशोदानंदन कंसनी सूदन निकुंज रास विलासी यशोदानंदन कंसनी सूदन निकुंज रास विलासी कदंब कानन रास परायण कदंब कानन रास परायण वृंद विपिन निवासी वृंद विपिन निवासी आनंदवर्धन प्रेम निकेतन फूल शरज जकाम आनंदवर्धन प्रेम निकेतन फूल शर जो जकाम गोपांगना गण चित्त विनोदन गोपांगना गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम समस्त गुण गण धाम जमुना जीवन केलि परायण मानस चंद्र चकोर जमुना जीवन केलि परायण मानस चंद्र चकोर नाम सुधारस गाओ कृष्ण यश नाम सुधारस गाओ कृष्ण यश राखो वचन मन मोर राखो वचन मन मोर विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव बोलो हरे हरे मुकुंद मुरारे 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 राम कृष्ण हय ग्रीव राम कृष्ण हय ग्रीव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Sab boliyega.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.